महाकवि सूरदास। हिंदुओं के स्वातंत्र के साथ ही साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छिपी। उस हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुंह से गाते और किन कानों से सुनते। जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। राम और रहीम को एक बताने वाली वाणी मुरझाए मन को हरा न कर सके, क्योंकि उसके भीतर उस कट्टर एकेश्वरवाद का सुर मिला हुआ था जिसका ध्वंसकारी स्वरूप लोग नित्य अपनी आँखों देख रहे थे। सर्वस्व गंवाकर भी हिंदू जाति अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखने की वासना नहीं छोड़ सकी थी। इससे उसने अपनी सभ्यता, अपने चिर संचित संस्कार आदि की रक्षा के लिए राम और कृष्ण का आश्रय लिया और उनकी भक्ति का स्रोत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया। जिस प्रकार वंग देश में कृष्ण चैतन्य ने, उसी प्रकार उत्तर भारत में वल्लभाचार्य जी ने परम भाव की उस आनंदा विधायनी कला का दर्शन कराकर जिसे प्रेम कहते हैं, जीवन में सरसता का संचार किया। दिव्य प्रेम संगीत की धारा में इस लोक का सुखद पक्ष निखर आया और जमती हुई उदासी या खिन्नता बह गई। जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणित होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों के बीच फैल मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरुली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह भक्त कवि सगुण उपासना का रास्ता साफ करने लगे। निर्गुण उपासना की निरस्ता और अग्राह्यता दिखाते हुए ये उपासना का हृदयग्राही स्वरूप सामने लाने में लग गए। इन्होंने भगवान का प्रेममय रूप ही लिया। इससे हृदय की कोमल वृत्तियों के ही आश्रय और आलंबन खड़े किए। आगे जो इनके अनुयायी कृष्ण भक्त हुए, वे भी इन्हीं वृत्तियों में लीन रहे। हृदय की अन्य वृत्तियों के रंजनकारी रूप भी चाहते, यदि चाहते तो कृष्ण में मिल जाते, पर उनकी ओर वे न बढ़े। भगवान का यह व्यक्त स्वरूप यदि एक देशी या केवल प्रेम था, पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी उसे हटाने में उपयोगी हुआ। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। बाल्यकाल और यौवन काल कितने मनोहर हैं। उनके बीच नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। उन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। उक्त दोनों रसों के प्रवर्तक रतिभाव के भीतर ही की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतनी का और कोई नहीं। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रसराजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने। उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बढ़कर चलने वाली न थी। यदि हम सूर के केवल विप्रलम्ब श्रृंगार को ही ले अथवा इस भ्रमर गीत को ही देखें तो न जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएं ऐसी मिलेंगी जिनके नामकरण तक नहीं हुए हैं। मैं इसी को कवियों की पहुँच कहता हूँ। यदि हम मनुष्य जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं तो सूरदास जी की दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है, पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुंच का विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अंतर्दृष्टि विस्तार और किसी कवि का नहीं। बात यह है कि सूर को गीत काव्य की जो परंपरा मिली वह श्रृंगार की ही थी। इसी से सूर के संगीत में भी उसी की प्रधानता रही। दूसरी बात है उपासना का स्वरूप। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जिन्होंने भक्ति मार्ग में भगवान का प्रेममय स्वरूप प्रतिष्ठित करके उसके आकर्षण द्वारा सायुज्य मुक्ति का मार्ग दिखाया था। भक्ति साधना के इस चरम लक्ष्य या फल की ओर सूर्य ने कहीं कहीं संकेत भी किया है, जैसे शीत उष्ण सुख दुख नाहि मानय, हानि भय कछु सोच न राचय, जाय समाय सूर्यवा निधि में बहुरी न उलट जाति मय नाचय। जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और अज्ञेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आलंबन की एकता है। अतः भगवत भक्ति की साधना के लिए इसी प्रेम तत्व को वल्लभाचार्य ने सामने रखा और उनके अनुयायी कृष्ण भक्त कवि इसी को लेकर चले। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि व्यक्तिगत साधना के अतिरिक्त लोक पक्ष पर भी थी, इसी से वे मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को लेकर चले और उसमें लोक रक्षा के अनुकूल जीवन की और वृत्तियों का भी उन्होंने उत्कर्ष दिखाया और अनुरंजन किया। उक्त प्रेम तत्व की पुष्टि में ही सूर्य की वाणी मुख्यतः प्रयुक्त जान पड़ती है। रति भाव के तीनों प्रबल और प्रधान रूप भगवत विषयक रति, वात्सल्य और दाम्पत्य रति सूर्य ने लिए हैं। यद्यपि पिछले दोनों प्रकार के रति भाव भी कृष्णोन्मुख होने के कारण तत्वतः भगवत प्रेम के अंतर्भूत ही हैं, पर निरूपण भेद से और रचना विभाग की दृष्टि से वे अलग रखे गए। इस दृष्टि से विभाग करने से विनय के जितने पद हैं वे भगवत विषयक रति के अंतर्गत आवेंगे। बाल लीला के पद वात्सल्य के अंतर्गत और गोपियों के प्रेम संबंधी पद दाम्पत्य रतिभाव के अंतर्गत होंगे। हृदय से निकली हुई प्रेम की इन तीनों प्रबल धाराओं से सूर्य ने बड़ा भारी सागर भरकर तैयार किया है। कवि कर्म विधान के दो पक्ष होते हैं, विभाव पक्ष और भाव पक्ष। कवि एक ओर तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है जो मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए भाव को और जगाने में समर्थ होती है, और दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है। एक विभाव पक्ष है, दूसरा भाव पक्ष। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य में दोनों अन्योन्याश्रित हैं, अतः दोनों रहते हैं। जहाँ एक ही पक्ष का वर्णन रहता है वहाँ भी दूसरा पक्ष अव्यक्त रूप में रहता है। जैसे नायिका के रूप या नक्षिक का कोरा वर्णन लें तो उसमें भी आश्रय का रतिभाव अव्यक्त रूप में वर्तमान रहता है। भाव पक्ष में सूर की पहुंच का उल्लेख ऊपर हो चुका है। सूरदास जी ने श्रृंगार और वात्सल्य ये ही दो रस दिए हैं, अतः विभाव पक्ष में भी उनका वर्णन उन्हीं वस्तुओं तक परिमित है जो दोनों रसों के आलंबन या उद्दीपन के रूप में आ सकती हैं। जैसे राधा और कृष्ण के नाना रूप, वेश और चेष्टाएं तथा करील कुंज, उपवन, यमुना, पवन, चंद्र, ऋतु इत्यादि। विभाव पक्ष के अंतर्गत भी वस्तुएं दो रूपों में लाई जाती हैं, वस्तु रूप में और अलंकार रूप में, अर्थात प्रस्तुत रूप में और अप्रस्तुत रूप में। मान लीजिए कि कोई कवि कृष्ण का वर्णन कर रहा है, पहले वह कृष्ण के श्याम या नील वर्ण शरीर को, उस पर पड़े हुए पीताम्बर को, त्रिभंगी मुद्रा को, स्मित आनंद को, हाथ में ली हुई मुरली को, सिर के कुंचित केश और मोर मुकुट आदि को सामने रखता है। यह विन्यास वस्तु रूप में हुआ। इसी प्रकार का विन्यास यमुना तट, निकुंज की लहराती लताओं, चंद्रिका, कोकिल पूजन आदि का होगा। इनके साथ ही यदि कृष्ण के शोभा वर्णन में घन और दामिनी, सनाल, कमल आदि उपमान के रूप में वाला आता है तो वह विन्यास अलंकार रूप में होगा। वर्ण विषय की परिमिति के कारण वस्तु विन्यास का जो संकोच सूर्य की रचना में दिखाई पड़ता है, उसकी बहुत कुछ कसर अलंकार रूप में लाए हुए पदार्थों के प्राचुर्य द्वारा पूरी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि प्रस्तुत रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या कम पर अलंकार रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है। यह दूसरे प्रकार की रूप योजना या व्यापार योजना किसी और रूप के प्रभाव को बढ़ाने के लिए होती है, अतः इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे ही होने चाहिए जो प्रभाव में उन प्रस्तुत रूपों या व्यापार के समान हो। सूर अलंकार योजना के लिए अधिकतर ऐसे ही पदार्थ लाए हैं। सारांश यह कि यदि हम बाह्य सृष्टि के लिए रूपों और व्यापारों के संबंध में सूर्य की पहुंच का विचार करते हैं, तो यह बात स्पष्ट देखने में आती है कि प्रस्तुत रूप में लिए गए पदार्थों और व्यापारों की संख्या परिमित है। उन्होंने कृष्ण और राधा के अंग प्रत्यंग, मुद्राओं और चेष्टाओं, यमुना तट, वंशीवट, निकुंज, गोचारण, वन विहार, बाल लीला, चोरी, नटखटी तथा कवि परपाटी में परिगणित ऋतुला सुलभ वस्तुओं तक को अपनी ओर रखा है। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इनकी रचना गीति काव्य है। इसमें मधुर ध्वनि प्रवाह के बीच कुछ चुने हुए पदार्थों और व्यापारों की झलक भर काफी होती है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के समान सुरसागर प्रबंध काव्य नहीं है। इसमें कथाक्रम से अनेक पदार्थों और व्यापारों की श्रृंखला जुड़ती चली चलती है। सूरदास जी ने प्रत्येक लीला या प्रसंग पर फुटकर पद कहे हैं। एक पद दूसरे पद से संबद्ध नहीं है, प्रत्येक पद स्वतंत्र है। इसी से किसी एक प्रसंग पर कहे हुए पदों को यदि हम लेते हैं तो एक ही घटना से संबंध रखने वाली एक ही बात भिन्न भिन्न रागिणियों में कुछ फेरफार के साथ बहुत पदों में मिलती है, जिससे पढ़ने वालों का जी कभी कभी ऊब सा जाता है। यह बात प्रकृत प्रबंध काव्य में नहीं होती। परिमिति का दूसरा कारण पहले ही कहा जा चुका है कि सूरदास जी ने जीवन की वास्तव में दो ही वृत्तियां ली हैं, बाल वृत्ति और यौवन वृत्ति। इन दोनों के अंतर्गत आए हुए व्यापार क्रीड़ा उमंग और उद्रेक के रूप में ही है। प्रेम भी घटनापूर्ण नहीं है, उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न विस्तार नहीं है, जिसके भीतर नई नई वस्तुओं और व्यापारों का सन्निवेश होता चलता है। लोक संघर्ष से उत्पन्न विविध व्यापारों की योजना सूर का उद्देश्य नहीं, उनकी रचना जीवन की अनेक रूपता की ओर नहीं गई है। बाल क्रीड़ा प्रेम के रंग रहस्य और उसकी अतृप्त वासना तक ही रह गई है। जीवन की गंभीर समस्याओं से तटस्थ रहने के कारण उसमें वह वस्तु गंभीर नहीं है जो गोस्वामी जी की रचनाओं में है। परिस्थिति की गंभीरता के अभाव से गोपियों के वियोग में भी वह गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग में है। उनका वियोग खाली बैठे का काम सा दिखाई पड़ता है। सीता अपने प्रिय से विरक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राक्षसों के बीच पड़ी हुई थी। गोपियों के गोपाल केवल दो चार कोस दूर के एक नगर में राज सुख भोग रहे थे। सूर का वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते करते किसी कुंज या झाड़ी में जा छिपते हैं, या यूं कहिए कि थोड़ी देर के लिए अंतर्धान हो जाते हैं। बस गोपियां मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा उमड़ चलती है, पूर्ण वियोग दशा उन्हें आ घेरती है। यदि परिस्थिति का विचार करें तो ऐसा विरावरण असंगत प्रतीत होगा, पर जैसा कहा जा चुका है, सुरसागर प्रबंध काव्य नहीं है। इसमें वर्णन की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता के निर्णय में घटना या परिस्थिति के विचार का बहुत कुछ योग रहता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बीच हम सूर के बाल कृष्ण को ही थोड़ा बहुत देखते हैं। कृष्ण के केवल बाल चरित्र का प्रभाव नंद, यशोदा आदि परिवार के लोगों और पड़ोसियों पर पड़ता दिखाई देता है। सूर का बाल लीला वर्णन ही पारिवारिक जीवन से संबद्ध है। कृष्ण के छोटे छोटे पैरों से चलने, मुंह में मक्खन लिपटाकर भागने या इधर उधर नटखटी करने पर नंद बाबा और यशोदा मैया का कभी पुलकित होना, कभी खींचना, कभी पड़ोसियों का प्रेम से उलाहना देना आदि बातें एक छोटे से जन समूह के भीतर आनंद का संचार करती दिखाई गई हैं। इसी बाल लीला के भीतर कृष्णचरित का लोक पक्ष अधिकतर गाया आया है, जैसे कंस के भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को नाथ कर लोगों का भय छुड़ाना, इंद्र के कोप से डूबती हुई बस्ती की रक्षा करने और नंद को वरुण लोक से लाने का वृत्तांत यद्यपि प्रेम लीला आरंभ होने के पीछे आया है, पर उससे संबद्ध नहीं है। कृष्ण के चरित्र में जो यह थोड़ा बहुत लोक संग्रह दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप में सूर्य की वृत्ति लीन नहीं हुई है। जिस शक्ति से उस बाल्यावस्था में ऐसे प्रबल शत्रुओं का दमन किया गया, उसके उत्कर्ष का मनोरंजनकारी और विस्तृत वर्णन उन्होंने नहीं किया है। इस ऊर्ज और उत्साह से तुलसीदास जी ने मारीच, ताड़का, खरदूषण आदि के निपात का वर्णन किया है। उस ऊर्ज और उत्साह से सूरदास जी ने बकासुर, अघासुर, कंस आदि के वध और इंद्र के गर्व मोचन का वर्णन नहीं किया है। कंस और उसके साथी असुर भी कृष्ण के शत्रु के रूप में ही सामने आते हैं, लोक शत्रु या लोक पीड़क रूप में नहीं। रावण के साथ ही राक्षसों के समान भी ब्राह्मणों को चबा चबा कर उनकी हड्डियों का ढेर लगाने वाले या स्त्री चुराने वाले नहीं दिखाई पड़ते। उनके कारण वैसा हाहाकार सुनाई नहीं पड़ता, उनका अत्याचार सभ्य अत्याचार जान पड़ता है। शक्ति, शील और सौंदर्य भगवान की इन तीन विभूतियों में से सूर्य ने केवल सौंदर्य तक ही अपने को रखा है, जो प्रेम को आकर्षित करता है। शेष दो विभूतियों को भी लेकर भगवान के लोक रंजनकारी स्वरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा हमारे साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। श्रद्धा या महत्व बुद्धि पुष्ट करने के लिए कृष्ण को की शक्ति या लौकिक महत्व की प्रतिष्ठा में आग्रह न दिखाने के कारण ही सूर्य की उपासना असख्य भाव की कही जाती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ सूरदास द्वारा वर्णित कृष्ण चरित्र का जो थोड़ा बहुत संबंध दिखाई पड़ता है, उसका सम्यक स्फुरण नहीं हुआ है। रहा प्रेम पक्ष, वह एकांतिक है। सूर का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। गोपियों के प्रेम भाव की गंभीरता आगे चलकर उद्धव का ज्ञान गर्व मिटाती हुई दिखाई पड़ती है। वह भक्ति की एकांत साधना का आदर्श प्रतिष्ठित करती हुई जान पड़ती है, लोक धर्म के किसी अंग का नहीं। सूरदास सच्चे प्रेम मार्ग के त्याग और पवित्रता को ज्ञान मार्ग के त्याग और पवित्रता के समकक्ष रखने में खूब समर्थ हुए हैं। साथ ही उन्होंने उस त्याग को रागात्मिका वृत्ति द्वारा प्रेरित दिखाकर भक्ति मार्ग या प्रेम मार्ग की सुगमता भी प्रतिपादित की है। तुलसी के समान लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापी दशाएं सूर्य ने वर्णन के लिए नहीं ली हैं। असुरों के अत्याचार से दुखी पृथ्वी की प्रार्थना पर भगवान का कृष्णावतार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पद में कह डाला है। इसी प्रकार कागासुर, बकासुर, शक्टासुर आदि को हम लोग पीड़कों के रूप में नहीं पाते हैं। केवल प्रलंब और कंस के वध पर देवताओं का फूल बरसाना देखकर उक्त कर्म के लोकव्यापी प्रभाव का कुछ आभास मिलता है, पर्वावरण विस्तृत नहीं है। सूरदास का मन जितना आनंद के घर की आनंद बधाई, बाल क्रीड़ा, मुरली के मोहिनी तान, रास नृत्य, प्रेम के रंग रहस्य और संयोग वियोग की नाना दशाओं में लगा है, उतना ऐसे प्रसंगों में नहीं। ऐसे प्रसंगों को उन्होंने किसी प्रकार चलता कर दिया है। कुछ लोग रामचरितमानस में राम के प्रत्येक कर्म पर देवताओं का फूल बरसाना देखकर उबते से हैं। उन्हें समझना चाहिए कि गोस्वामी जी ने राम के प्रत्येक कर्म के ऐसे व्यापक प्रभाव को चित्रित किया है जिस पर तीनों लोग की सृष्टि लगी रहती है, जिस पर तीनों लोगों की लोक की दृष्टि लगी रहती थी। कृष्ण का गोचारण और रासलीला आदि देखने को भी देवगण एकत्र हो जाते हैं, पर केवल तमाशबीन की तरह। सूरदास जी को मुख्यतः श्रृंगार और वात्सल्य का कवि समझना चाहिए। यद्यपि और रसों का भी एकाध जगह अच्छा वर्णन मिलता है, जैसे दावानल के इस वर्णन में भयानक रस का, बहरात जहरात दावानल आयो, घेर चहु ओर करिशोर अंदोर, बन घरनी आकाश चहुपास छायो, भरत बन बास थर हरत कुशकास, जरी उड़त बहु झांस अति प्रबल धायो, झपटी झपटत लपटत फूल फुटत, पटकी चटकी लट लटकी द्रुम फटी नवायो, अति अग्नि झार झंझार धुंधार, करि उचटी श्रृंगार झंझार छायो, भरत बन पात भहरात भ झहरात अररात, तरु महाधरणि गिरायो। पर जैसा कहते आ रहे हैं, मुख्यतः श्रृंगार और वात्सल्य की ही है, पर इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों रसों के वे सबसे बड़े कवि हैं। यहाँ तक तो सूर्य की रचना के सामान्य दृष्टि से समीक्षा हुई। अब इन महाकवि की उन विशेषताओं का थोड़ा बहुत दिग्दर्शन होना चाहिए जिनके कारण हिंदी साहित्य में इनका स्थान इतना ऊंचा है। ध्यान देने की सबसे पहली बात यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्य रचना और इतनी प्रचुर प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण की अगले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ उनकी जूठी जान पड़ती हैं। यह बात हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों को उलझन में डालने वाली होगी। सुर सागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का है, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं। यदि भाषा को लेकर देखते हैं तो ब्रज की चलती बोली होने पर भी एक साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो और प्रांतों के कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों के साथ ही साथ पुरानी काव्य भाषा अपभ्रंश के शब्दों को लिए हुए है। सूर की भाषा बिल्कुल बोलचाल की ब्रजभाषा नहीं है। चाकों, तासों, वाकों, चलती ब्रजभाषा के इन रूपों के समान ही जेही, तेही आदि पुराने रूपों का प्रयोग बार बार मिलता है, जो अवधि के बोलचाल में तो अब तक है पर ब्रज की बोलचाल में सूर के समय में भी नहीं थे। पुराने निश्चयार्थक पय का व्यवहार भी पाया जाता है, जैसे जाहे लगे स्वई पय जानय, प्रेम बान अनियारो, गोण, आपन, हमार आदि पूर्वी प्रयोग भी बराबर पाए जाते हैं। कुछ पंजाबी प्रयोग भी मौजूद हैं, जैसे महंगी के अर्थ में प्यारी शब्द। ये सब बातें एक व्यापक काव्य भाषा के अतिरिक्त की सूचना देती हैं। अब हम संक्षेप में उन प्रसंगों को लेते हैं जिसमें सूर की प्रतिभा पूर्णतया लीन हुई है। कृष्ण जन्म की आनंद बधाई के उपरांत ही बाल लीला का आरंभ हो जाता है। जितने विशद और विस्तृत रूप में बाल्य जीवन का चित्रण उन्होंने किया है, उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया। शैशव से लेकर कौमार अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है, कवि ने बालकों की अंत प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल्य भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। देखिए स्पर्धा का भाव जो बालकों में स्वाभाविक होता है, इन वाक्यों से किस प्रकार व्यंजित हो रहा है। मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जो हुई है लाभी मोटी। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं मिलता जितना बड़ा सुर सागर में है। दो चार चित्र देखिए। पहला, कतहो आरी करत मेरे मोहन, यो तू आंगन लोटी, जो मांगहु सुदेहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी, सूरदास को ठाकुर ठाड़ो, हाथ लकुट लिए छोटी। दूसरा, शोभित कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। तीसरा, सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब राय करिपान गहावत, डगमग धरें पैया। चौथा, पाहुन कर तनक माहियो, अरि करो बन मोहन मेरो, अंचल आन गहियो, व्याकुल मथत मथनिया रीति, दधि भौएं ढर की रहियो। हार जीत के खेल में बालकों के क्षोभ के कैसे स्वाभाविक वचन सूर ने रखे हैं। खेलत में को काक गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस एकत करत रिसैया, जाति पाजी हमते कछु नाही, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। अब यहाँ पर थोड़ा इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए कि इन बाल चेष्टाओं का काव्य विधान में क्या स्थान होगा। वात्सल्य रस के अनुसार बालकृष्ण आलम्बन होंगे और नंद या यशोदा आश्रय, अतः चेष्टाएँ अनुभव के अंतर्गत आती हैं और आलम्बनगत चेष्टाएँ उद्दीपन के भीतर आ सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ऐसे चेष्टाओं का स्थान भाव विधान के भीतर है, उन्हें अलंकार विधान के भीतर घसीट कर स्वभावोक्ति अलंकार कहना मेरी समझ में ठीक नहीं। बाल लीला के आगे फिर उस गोचारण का मनोरम दृश्य सामने आता है जो मनुष्य जाति की अत्यंत प्राचीन वृत्ति होने के कारण अनेक देशों में काव्य का प्रिय विषय रहा है। यवन देश के पशुचारण काव्य पर का मधुर संस्कार यूरोप की कविता पर अब तक कुछ न कुछ चला ही जाता है। कवियों को आकर्षित करने वाली गोप जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश। कृषि वाणिज्य आदि और व्यवसाय जो आगे चलकर निकले वे अधिक जटिल हुए, उसमें उतनी स्वच्छंदता न रही। कवि श्रेष्ठ कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के आरंभ में दिलीप को नंदिनी के साथ वन वन फिराकर इसी मधुर जीवन का आभास दिलाया है। सूरदास जी ने जमुना के कछारों के बीच गोचारण के बड़े सुंदर सुंदर दृश्यों का विधान किया है, यथा मैया रे मोहि दाऊ टेरत मोको वन फल तोरी देत है आपुन गैयन घेरत। यमुना तट पर किसी बड़े पेड़ की शीतल छाया में बैठकर कभी सब सखा कलेऊ बांटकर खाते हैं, कभी इधर उधर दौड़ते हैं, कभी कोई चिल्लाता है, द्रमचड़ी काहे न टेरत कान्हा गैया दूरी गई धाई जात सबन के आगे जे वृषभान दई। जे वृषभान दई कहकर सूर ने पशु प्रकृति का अच्छा परिचय दिया है। नए खूटे पर आए हुए गाय बहुत दिनों तक चंचल रहती हैं और भागने का प्रयत्न करती है, इसी से वृषभानों की दी हुई गायें चरते समय भी भाग खड़ी होती हैं और कुछ दूसरी गायें भी स्वभावानुसार उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं। वृंदावन के उसी सुखमय जीवन के हास प्रयास के बीच गोपियों का प्रेम का उदय होता है। गोपियाँ कृष्ण के दिन दिन खिलते हुए सौंदर्य और मनोहर चेष्टाओं को देखकर मुग्ध होती चलती हैं और कृष्ण कौमार्य अवस्था के स्वाभाविक चपलतावश उनसे छेड़छाड़ करना आरंभ करते हैं। हास प्रयास और छेड़छाड़ के साथ प्रेम व्यापार का अत्यंत स्वाभाविक आरंभ सूर्य ने दिखाया है। किसी के रूप की चर्चा सुन या अकस्मात किसी की एक झलक पाकर हाय हाय करते हुए इस प्रेम का आरंभ नहीं हुआ है। नित्य अपने बीच चलते फिरते हंसते बोलते वन में गाय चराते देखते देखते गोपियां कृष्ण में अनुरक्त होती हैं और कृष्ण गोपियों में। इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, जिसमें अनेक प्रकार के प्रतिबंधों और विघ्न बाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी कथा खड़ी होती है। सूर्य के कृष्ण और गोपियां पक्षियों को समाज स्वच्छंद समाज का स्वप्न जैसा अंग्रेज कवि शेली देखा करते थे, उसी प्रकार का यह समाज सूर्य ने चित्रित किया है। सूर्य के प्रेम की उत्पत्ति में रूपलिप्सा और साचर्य दोनों का योग है। बाल कीड़ा के सखा सखी आगे चलकर यौवन कीड़ा के सखा सखी हो जाते हैं। गोपियों ने उद्धव से साफ कहा है, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। केवल एक साथ रहते रहते भी दो प्राणियों में स्वभावतः प्रेम हो जाता है। कृष्ण एक तो बाल्यावस्था से ही गोपियों के बीच रहे, दूसरे सुंदरता में भी वे अद्वितीय थे। अतः गोपियों के प्रेम का क्रमशः विकास दो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से होने के कारण बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होता है। बाल क्रीड़ा इस प्रकार क्रमशः यौवन क्रीड़ा के रूप में परिणत होती गई कि संधि का पता ही नहीं चलता। रूप का आकर्षण बाल्यावस्था से ही आरंभ हो जाता है। राधा और कृष्ण के विशेष प्रेम की उत्पत्ति सूर्य ने रूप के आकर्षण द्वारा ही की है। क खेलन हरि निकुश ब्रज खोरी गए श्याम रवि तनया के तट अंग लसत चंदन की खोरी औचक ही देख तह राधा नयन विशाल भाल दिए रोरी सूर्य श्याम देखत ही रीच है नयन नयन मिली पानी ठगोरी। ख बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रहती काकी तू बेटी देखी ना ही कहूँ ब्रज खोरी काहे को हम ब्रज तन आवत खेलते रहती आपने पोरी सुनती रहती श्वनन नंद ढोटा कहत करत रहत माखन दधि चोरी तुम्हारो कहाँ चोरी हम लई हैं खेलन चलो संग मिली चोरी सूर्यदास प्रभु रसिक सिरो मने बातन भुरे राधिका भोरी। इस खेल ही खेल में इतनी बड़ी बात पैदा हो गई कि इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम आरंभ उभय पक्ष में सम है, आगे चलकर कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उसमें कुछ विषमता दिखाई पड़ती है। कृष्ण यद्यपि गोपियों को भूले नहीं हैं, उद्धव के मुख से उनका वृत्तांत सुनकर वे आंखों में आंसू भर लेते हैं, पर गोपियों ने जैसा वेदनापूर्ण उपालंब दिया है उससे अनुराग की कमी व्यंजित होती है। पहले कहा जा चुका है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूर्य की समता को और कोई कवि नहीं पहुंचा है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता। वृंदावन में कृष्ण और गोपियों का संपूर्ण जीवन क्रीड़ामय है और वह संपूर्ण क्रीड़ा संयोग पक्ष है। उसके अंतर्गत विभावों की परिपूर्णता कृष्ण और राधा के अंग प्रत्यंग की शोभा के अत्यंत प्रचुर और चमत्कारपूर्ण वर्णन में तथा वृंदावन के करील कुंजों, लोनी लताओं, हरे भरे कछारों, खिली हुई चांदनी, कोकिल कूजन आदि में देखी जाती है। अनुभावों और संचारियों का इतना बाहुल्य और कहाँ मिलेगा। सारांश यह कि संयोग सुख के जितने प्रकार के क्रीड़ा विधान हो सकते हैं वे सब सूर्य ने लाकर इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें भी आ गई हैं जैसे कृष्ण के कंधे पर चढ़कर फिरने का राधा का आग्रह, जो कम रसिक लोगों को अरुचकर स्तरणता प्रतीत होगी। सूर्य का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है। प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वालों को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। राधा कृष्ण के रंग रहस्य कितने प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूर्य का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय भंडार प्रतीत होता है। प्रेमोदय काल की विनोद वृत्ति और हृदय प्रेरित भावनाओं भावों की छटा चारों ओर छलकी पड़ती है। राधा और कृष्ण का गाय चराते समय वन में भी साथ हो जाता है, एक दूसरे के घर आने जाने भी लगे हैं, इसलिए ऐसी बातें नित्य जाने कितनी हुआ करती हैं। करिल्यो न्यारी हरि आपन गैया, नाहिन बसात लाल कछु तुम सो सबे गाल एक ठैया। ख धीर्ण दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत एक धार जह प्यारी ठाढ़ी। मोहन करते धार चलति पय, मोहन मुख अति की छवि बाढ़ी। ग तुम पय कौन दुहाबय गैया, इत चितवत तो धार चलावत यही सिखाए है मैया। यशोदा के इस कथन का कि बार बार तो यहाँ क्यों उत्पात मचाने आती है, राधा जो उत्तर देती है उसमें प्रेम के आविर्भाव की कैसी सीधी और भोली भाली व्यंजना है। बार बार तू ही यहाँ जानी आवय, मैं कहाँ करो सुतह नाहि बरजति घर ते मोहि बुलावय। मोह सो कहत तो ही बिनु देखे रहत न मेरो प्राण, छोह लगत मोको सुनिबाने महरि तिहारी आन। कहने का सारांश यह है कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सूर को था वैसा और किसी कवि को नहीं। उनका सारा संयोग वर्णन लंबी चौड़ी प्रेमचर्या है, जिसमें आनंदोल्लास के न जाने कितने स्वरूपों का विधान है। रासलीला, दानलीला, मानलीला इत्यादि सब उसी के अंतर्गत है। पीछे देव कवि ने एक अष्टयाम रचकर प्रेमचर्या दिखाने का प्रयत्न किया, पर वह अधिकतर एक घर के भीतर के भोग विलास की कृत्रिम दिनचर्या के रूप में है। उसमें न तो वह अनेक रूपता है और न प्राकृतिक जीवन की वह उमंग। आलंबन के रूप प्रतिष्ठा के लिए कृष्ण के अंग प्रत्यंग का सूर ने जो सैकड़ों पदों में वर्णन किया है वह तो किया ही है। आश्रय पक्ष में नेत्र व्यापार और उसके अद्भुत प्रभाव पर एक दूसरी ही पद्धति पर बड़ी ही रम्य उक्तियाँ बहुत अधिक हैं। रूप को हृदय तक पहुँचाने वाले नेत्र ही हैं, इससे हृदय की सारी आकुलता, अभिलाषा और उत्कंठा का दोष इन्हीं रूपवाहकों के सिर मड़कर सूर ने अनेक भाव प्रभाव प्रदर्शन के लिए बड़े अनूठे ढंग निकाले हैं। कहीं उनकी न पूछने वाली प्यास की परेशानी दिखाई है, कहीं उनकी चपलता और निरंकुशता पर इन्हें कोसा है। पीछे बिहारी, राम सहाय, गुलाम नबी और रसनिधि ने भी इस पद्धति का बहुत कुछ अनुसरण किया, पर यहाँ तो भंडार भरा हुआ है। इस प्रकार के नेत्र व्यापार वर्णन आश्रय पक्ष और आलंबन पक्ष दोनों में होते हैं। सूर्य ने आश्र पक्ष में ही इस प्रकार के वर्णन किए हैं, जैसे मेरे नैना बिरह की बेल बई, सिंचित नीर रैन के सजरी, मूल पताल गई, विगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भई, अब कैसे निर्वारों सजनी, सब तन पसरी छई। आलंबन पक्ष में सूर्य के नेत्र वर्णन उपमा उत्प्रेक्षा आदि से भारी रूप चित्रण की शैली पर ही है, जैसे देखिरी हरि के चंचल नयन, खंजन मीन मृगई चपलाई, नहीं पटरत एक सैन, राजीव दल इंदीवर सतदल, कमल कुशेयस जाति, निश मुद्रित प्रातः वे विगसत, ये विगसत दिन राति, अरुण असित सित वलक वलक, पतिको वरणय उपमान, मानो सरस्वती गंग जमुल मिली, आगम कीनो आन। आलंबन में स्थित नेत्र क्या करते हैं, इसका वर्णन सूर्य ने बहुत ही कम किया है। पिछले कुछ कवियों ने इस पक्ष में भी चमत्कारपूर्ण उक्तियां कही है, जैसे सूर्य ने तो अरुण असित सित झलक पर गंगा यमुना और सरस्वती की उत्प्रेक्षा की है, और गुलाम नबी रसलीन ने उसी झलक की करतूत दिखाई है। अभी हलाहल मद भरे स्वित श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। मुरली पर कही हुई उक्तियों भी ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि उनसे प्रेम को सजीवता टपकती है। यह वह सजीवता है जो भरे हुए हृदय से छलकर निर्जीव वस्तुओं पर भी अपना रंग चढ़ाती है। गोपियों की छेड़छाड़ कृष्ण तक ही रहती है, उनकी मुरली तक भी जो प्रेम और निर्जीव है पहुंचती है। उन्हें वह मुरली कृष्ण के संबंध से कभी उठलाती, कभी चिढ़ाती और कभी प्रेम गर्व दिखलाती जान पड़ती है। उसी संबंध भावना से उसे कभी फटकारती है, कभी उसका भाग्य सराहती है और कभी उससे ईर्ष्या प्रकट करती है। क मायर ये मुरली अति गर्व काहू, बदती नहीं आज, हरि कह मुख कमल देख उपायो सुखराज। ख मुरली तौ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंद दही, नाना भति न चावती, राखति के पाय ठाढ़े करि अति अधिकार जनावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव सोपद पलुटावती, भ्रकुटि कुटिल कोप नासा पुट हम पर कोपि कुपावती। हृदय के पारखी सूर ने संबंध भावना की शक्ति का अच्छा प्रसार दिखाया। कृष्ण के प्रेम ने गोपियों में इतनी सजीवता भर दी है कि कृष्ण क्या कृष्ण की मुरली तक से छेड़छाड़ करने को उनका जी चाहता है। हवा से लड़ने वाली स्त्रियां देखी नहीं तो कम से कम सुनी बहुतों ने होंगी, चाहे उनकी जिंदा दिली की कद्र न की हो। मुरली के संबंध में कहे हुए गोपियों के वचन से दो मानसिक तथ्य उपलब्ध होते हैं। आलंबन के साथ साथ किसी वस्तु की संबंध भावना का प्रभाव तथा अत्यंत अधिक या फालतू उपंग के स्वरूप। मुरली संबंध ने उक्तियों में प्रधानता पहली बात की है, यद्यपि दूसरे तत्व का ही मिश्रण है। फालतू उमंग के बहुत अच्छे उदाहरण उस समय देखने में आते हैं जब कोई स्त्री अपने प्रिय को कुछ दूर पर देख कभी कठोर खाने पर कंकड़ पत्थर को दो चार गीली गालियां सुनाती है, कभी रास्ते में पड़े हुए पेड़ की टहनी पर भ्रूभंग सहित जुझलाती है और कभी अपने किसी साथी को यूं ही ढकेल देती है। यह सूचित करने की आवश्यकता तो कदाचित न हो कि रूप पर मोहित होना, दर्शन के लिए आकुल होना, वियोग में तड़पना आदि गोपियों के पक्ष में जितना कहा गया है उतना कृष्ण के पक्ष में नहीं। यह यहाँ के श्रृंगारी कवियों के विशेषतः फुटकर पद रचने वालों की समान प्रवृत्ति हो रही है। तुल्यानुराग होने पर भी स्त्रियों की प्रेम दशा या काम दशा का वर्णन करने में ही यहाँ के कवियों का मन अधिक लगा है। पुराने प्रबंध काव्यों में तो यह भेद उतना लक्षित नहीं होता, पर पीछे के काव्यों में यह स्पष्ट झलकता है। वाल्मीकि जी ने रामायण में सीता हरण के उपरांत राम और सीता दोनों का वियोग दुख वर्णन में प्रायः समान शब्द व्यय किया है। कालिदास ने मेघदूत का आरंभ यक्ष की विरावस्था से करके उत्तर मेघ में यक्षिणी के विरह का वर्णन किया है। उसके नाटकों में भी प्रायः यही बात पाई जाती है। अतः मेरी समझ में श्रृंगार में नायिका के प्रेम दशा या विरह दशा का प्राधान्य श्रीमद् भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण की कृष्ण लीला के अधिकाधिक प्रचार के साथ हुआ। इसमें एक ओर तो आनंद सौंदर्य की स्थापना की गई और दूसरी ओर स्वाभाविक प्रेम का उदय दिखाया गया। पुरुष आलम्बन हुआ और स्त्री आश्रय। जनता के बीच प्रेम के स्वरूप ने यहाँ तक प्रचार पाया कि क्या नगरों में क्या ग्रामों में सर्वत्र प्रेम के गीतों के नायक कृष्ण हुए और नायिका राधा। बनवारी या कन्हैया नायक का एक सामान्य नाम सा हो गया। दिल्ली के पिछले बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले तक को होली के दिनों में कन्हैया बनने का शौक हुआ करता था। और देशों के फुटकर श्रृंगारी कविताओं में प्रेमियों के विरह आदि के वर्णन की प्रधानता देखी जाती है। जैसे एशिया के अरब फारस आदि देशों में, वैसे ही यूरोप के इटली आदि काव्य संगीत प्रिय देशों में भी यही पद्धति प्रचलित रही। इटली में पिट्रार्क की श्रृंगारी कविता एक प्रेमिका के हृदय का उद्गार है। भारत में कृष्ण कथा के प्रभाव से नायक के आकर्षक रूप में प्रतिष्ठित होने से पुरुषों की प्राधान्य वासना की अधिक तृप्ति हुई। आगे चलकर पुरुषत्व पर इसका कुछ बुरा प्रभाव पड़ा। बहुतेरे शौर्य पराक्रम आदि पुरुषोचित गुणों से मोह मोड़ चटक मटक लटक न जाने में लगे। बहुत जगह तो मांग पट्टी सुरमे मिस्सी तक की नौबत पहुंची। यूरोप में जहां स्त्री प्रधान आकर्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुई, उसका उल्टा हुआ। वहां स्त्रियों के बनाव श्रृंगार और पहनावे के खर्च के मारे पुरुषों के नाकों दम हो गए। सूर्य के संयोग वर्णन की तो बात हो चुकी, उनका भी प्रलंब भी ऐसा ही विस्तृत और व्यापक है। वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंग से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद हैं। आरंभ वात्सल्य रस के वियोग पक्ष से हुआ है। कृष्ण के मथुरा से न लौटने पर नंद और यशोदा दुख के सागर में मग्न हो गए हैं। अनेक दुखात्मक भाव तरंगे उनके हृदय में उठती हैं। कभी यशोदा नंद से खींच कर कहती हैं, छाड़ी स्नेह चले मथुरा कत दौरी न चीर गहियो, हाट न गई वज्र की छाती कत यह सूल सहियो। इस पर नंद यशोदा पर उलट पड़ते हैं। तब तो मारी बोई करती रसन आगे कहे जो आवत, अब लय भाड़ भरती रोस कह कर दाबरी लय फिरती घर घर धरती, कठिन ही करी तब तो बांध्यो अब वृथा करी मरती। यह जो जलाहट वियोग जन्य है, प्रेम भाव के अंतर्गत है और कितनी स्वाभाविक है। सुख शांति के भंग का कैसा यथार्थ तथ्य चित्र है। आगे देखिए गहरी उत्सुकता और अधीता के बीच विरक्ति और तिरस्कार मिश्रित खिजलाहट का यह मेल कैसा अनूठा उतरा है। यशोदा नंद से कहती है, नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए, देह विदा मिली जाहि मधुपुरी जहाँ गोकुल के राय। ठोंकी बजाए में कितनी वंदना है, तुम अपना ब्रज अच्छी तरह संभालो, तुम्हें उसका गहरा लोभ है, मैं तो जाती हूँ। एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे रहा है। एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ है। श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से मुक्त ऐसा ही भाव गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता है। इसे भाव सबलता कहें या भाव पंचामृत, क्योंकि ही एक ही वाक्य नंद ब्रज लीजय ठोकी बजाय में कुछ निर्वेद कुछ तिरस्कार और कुछ अमर्श, इन तीनों की मिश्र व्यंजना जिसे सबलता ही कहने से संतोष नहीं होता पाई जाती है। सबलता के प्रदत्त उदाहरणों में प्रत्येक भाव अलग शब्दों या वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, पर उक्त वाक्य में यह बात नहीं है। ग्वाल सखाओं की भी यही दशा हो रही है। कभी वे व्याकुल और अधीर होते हैं, कभी कृष्ण की निष्ठुरता पर क्षुब्ध होकर कहते हैं, भय हरि मधुपुरी राजा बढ़े वंश कहाय, सूत मागध बदत वरदही वरण वसुद्योतात, राजभूषण अंग भ्राजत अहिर कहत लजात। वियुक्त प्रिय पुत्र के सुख के निश्चय की शंका तक न पहुँचती हुई भावना दीनता और क्षोभजन उदासीनता किस प्रकार इन वचनों से टपकती है। सदेशो देव की सो कहियो, हौ तो धाय तिहारो सुत की कृपा करत ही रहियो, तुम तो टेव जानत ही वही हो तव मोह कहीं आवय, प्रात उठत मेरे लाल लड़ते ही माखन रोटी भावय। कृष्ण राजभवन में जा पहुँचे हैं। यह जानते हुए भी यशोदा के प्रेमपूर्ण हृदय में यह बात जल्दी नहीं बैठती कि कृष्ण के सुख का ध्यान जितना वे रखती थी उतना संसार में और भी कोई रख सकता है। रसमग्न हृदय ही ऐसी दशाओं का अनुभव कर सकता है। केवल उदाहरण की डफली पीटने वालों के भाग्य में यह बात कहाँ। आगे चलकर गोपियों के वियोग दशा का जो धारा प्रवाह वर्णन है उसका तो कहना ही क्या है। न जाने कितनी मानसिक दशाओं का संचार उसके भीतर है, कौन गिना सकता। संयोग और वियोग दो अंग होने से श्रृंगार की व्यापकता बहुत अधिक है, इसी से वह रसराज कहलाता है। इस दृष्टि से यदि सुर सागर को हम रस सागर कहें तो बिखट के कह सकते हैं। कृष्ण के चले जाने पर सायं प्रभात तो उसी प्रकार होते हैं, पर मदन गोपाल बिना या तन की समय बात बदली ब्रज में पहले सायंकाल में जो मनोहर दृश्य देखने में आया करता था वह अब बाहर नहीं दिखाई पड़ता, पर मन से उसकी स्मृति नहीं जाती। यही बेरियाँ बनते ब्रज आवते दुरहते व बीनु अधर धरी बारंबार बजावत। संयोग के दिनों में आनंद की तरंगे उठाने वाले प्राकृतिक पदार्थों को वियोग के दिनों में देखकर जो दुख होता है उसी व्यंजना के लिए कवियों में उपालंब की चाल बहुत दिनों से चली आती है। चंद्रोपालंब संबंधी बड़ी सुंदर कविताएं संस्कृत साहित्य में हैं। देखिए सागर मंथन के समय चंद्रमा को निकालने वालों तक इस उपालंब में किस प्रकार गोपियां अपने दृष्टि दौड़ाती हैं। या बिन हो तो कहाँ अब सोनो, लय किन प्रगट कियो प्राच दिशी, बिरहिन को दुख दूनो। सब निर्दय सुर असुर बैल सैल सखी, सायर सर्प समेत, धन्य कहो वर्षा ऋतु तमचुर औ कमलन को हेत, जुगुची जीव जरा बापुरी मेले राहु अरुकेत। इसी पद्धति के अनुसार वियोगिनी गोपियां अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ को खोजती हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे, तुम हो नीजल लाज नहीं तुमको, फिर सिर पहुप धरे, ससा स्यार औ बन के पखीर दिक दिक सवन करे, कौन काज के ठाड़े रह बन में काहिन उकठ परे। इसी प्रकार रात को उन्हें सांपनी सी लगती रहती है। सांपनी की काली पीठ और पेट सफ़ेद होता है, ऐसा प्रसिद्ध है कि वह काट कर उलट जाती है जिससे सफ़ेद भाग ऊपर हो जाता है। बरसात की अंधेरी रात में कभी कभी बादलों के हट जाने से जो चादरें फैल जाती है वह ऐसी ही लगती है। पियाबिन सांपनी कारी रात, कबहु जामिनी होत जुनैया डसे उलट होई जात। इस पद पर न जाने कितने लोग लट्टू हैं। सूरदास जी का विहार स्थल जिस प्रकार घर की चार दीवारी के भीतर तक किना रहकर यमुना के हरे भरे कछारों कुरील के कुंजों और वनस्थलियों तक फैला है, उसी प्रकार उनका विरह वर्णन में बैरन भई रतियाँ और सांपिन भई सजिया तक किना रहकर प्रकृति के खुले क्षेत्र के बीच दूर दूर तक पहुँचता है। मनुष्य के आदि वन्य जीवन के परम्परागत मधुर संस्कार को उद्दीप्त करने वाले इन शब्दों में कितना माधुर्य है। एक वन ढूंढ सकल वन ढूंढो, कतहु न श्याम लहो, ऋतुओं का आना जाना उसी प्रकार लगा है। प्रकृति पर उनका रंग वैसा ही चढ़ता उतरता दिखाई पड़ता है। भिन्न भिन्न ऋतुओं के वस्तुएं देख जैसे गोपियों के हृदय में मिलने की उत्कंठा उत्पन्न होती है, वैसे ही कृष्ण के हृदय में क्यों नहीं उत्पन्न होती। जान पड़ता है कि ये सब उधर जाती ही नहीं जिधर कृष्ण बसते हैं, सब वृंदावन में ही आकर अपना अड्डा जमाती हैं। मानो माई सबन इतय ही भावत, अब वही देश नंद नंदन को न समो जनावत, धरत न वन नवपत्र फूल फल पिंक वसंत नहीं गावत, मुदित न सर सरोज अलि गुंजत पवन पराग उड़ावत, पावस विविध वरण बर बादर उठ नहीं अंबर छावत, चातक मोर चकोर सोर कर दामिनी रूप दुरावत। अपनी अंतर्दशा को ऋतु सुलभ व्यापारों के बीच बिंब प्रतिबिंब रूप में देखना भावमग्न अंतःकरण की विशेषता है। इसके वर्णन में प्रस्तुत अप्रस्तुत का भेद मिट सा हो जाता है। ऐसे वर्णन पावस के प्रसंग में सूर ने बहुत अच्छे किए हैं। निश्चिति ने बरसत नयन हमारे बहुत प्रसिद्ध पद है। विरहोन्माद में भिन्न भिन्न प्रकार की उठती हुई भावनाओं से रंजित होकर एक ही वस्तु कभी किसी रूप में दिखाई पड़ती है, कभी किसी रूप में। उड़ते हुए बादल कभी तो ऐसे भीषण रूप में दिखाई पड़ते हैं। देखिए तो चहुदिस ते घन घोरे, मानो मत्त मदन के हथियन बल करी बंधन तोरे। कारे तन अति चुवत गंड मद, बरसत थोरे थोरे। रुकत न पवन महावत होंप, मूरतन अंकुश मोरे। कभी अपने प्रकृत लोक सुखदायक रूप में ही सामने आते हैं और कृष्ण की अपेक्षा कहीं दयालु और परोपकारी लगते हैं। बरो ये बदराऊ बरसन आए, अपनी अवधि जाने नंद नंदन। गरज गगन घन छाए, सुनियत है सुरलोक बसत सखी। सेवक सदा पराए, चातक कुल की पीरे जानिकए। त्यो तहाँ ते धाये, द्रुम किय हरित हर्ष बेली बिली। दादुर मृतक जिवाए। बदराऊ के ऊ और बरु में कैसी वंजना है, बादल तक जो जड़ समझे जाते हैं, आश्रितों के दुख से द्रवीभूत होकर आते हैं। प्रिय के साथ कुछ रूप साम के कारण वे ही मेघ कभी प्रिय लगने लगते हैं। आज घन श्याम की अनुहारी, उन्हें आयु सांवरे ते सजने। देख रूप की आरी, इंद्र धनुष मानो नवल वसन छवि। दामिनी दसन विचारी, जनु भग पाति माल मोतिन की। चितवत हित निहारी। उसी प्रकार पपीहा कभी तो अपनी बोली के द्वारा प्रिय का स्मरण कराकर दुख बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है और यह फटकार सुनाता है। हौ तो मोहन के विरह जरीरे, तू कत जारत। रे पापी तू पंखी पपीहा, प्यू प्यू अधिराति पुकारत। सब जग सुखी दुखी तू जल बिनु, तौन तन की वीथ विचारत। सूर्य श्याम बिनु ब्रज पर बोलत, हठि अगिलोभ जन्म बिगारत। और कभी सम दुख भोगी के रूप में अत्यंत सुहृद जान पड़ता है और समान प्रेम व्रत पालन के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है। बहुत दिन जीव पपीहा प्यारो, बासर रैन नावल बोलत भयो बिरह जुरकारो। आप दुखित पर दुखित जान जिय, चातक नाम तिहारो। देखो सकल विचार सखी, जिय विरिछन को दुख न्यारो। जा ही लगे सोई पै जान, प्रेम बाण अनियारो। सूरदास प्रभु स्वाति बूत लगी, तज्जो सिंध करिखारो।